इरिटेटिंग अरमान। आस्था ने हॉल में सभी लोगों को एक साथ परेशान देखा तो वो एकदम हैरान हो गई। इसलिए वो फटाफट नानी माँ के पास आते हुए बोली, नानी माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अंश तो सो गया था ना, वो ठीक तो है ना? अब आगे। तभी अरमान ने एक नज़र वंशिका की ओर देखा और फिर आस्था से बोला, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, जहाँ तुम दोनों रहते हो वहाँ से बिना बताए बाहर जाने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है? अरमान की बातें सुनकर आस्था का माथा एकदम से झनझना उठा और वो नाराज़ नज़रों से अरमान को देखकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो? क्या आपने बीच रास्ते से हमें सिर्फ यही बताने के लिए बुलाया कि आप हमें ये बता सको कि हम आपको बिना बताए इस घर से बाहर नहीं जा सकते? और वैसे भी मैं जहाँ भी गई थी वो मेरी मर्ज़ी थी मिस्टर सिंघानिया। मैं आपके घर का सारा काम करके गई थी और मुझे क्या पता था कि आप ऑफिस टाइम में ही घर आ जाएंगे? आस्था की आवाज़ और अंदाज़ देखकर अरमान कहीं ना कहीं को बुरा लगा, लेकिन अचानक वो कुछ सोचकर तुरंत ही अपना मूड ठीक करते हुए ज़ोर से हंसने लगा। अरमान को ऐसे बेपरवाही से हंसते हुए देखकर सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखकर कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरमान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं आहान गंभीर होकर ध्रुव के कान में धीरे से फुसफुसाया, ये भाई को क्या हुआ है? कहीं तुमने अरमान भाई को कोई गलत दवाई तो नहीं दे दी है? इनका बर्ताव इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अगले ही पल ध्रुव ने तुरंत दादाजी की ओर देखकर अरमान को शांत रखने का इशारा किया। अब सभी दादाजी की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे, क्योंकि इस सिचुएशन में दादाजी ही थे जो अरमान के इमोशंस को संभाल सकते थे। दादाजी ने तुरंत आंखों के इशारे से हामी भरी और अरमान की ओर देखकर शांत स्वर में बोले, बेटा तू अचानक ऐसे हंस क्यों रहा है? बता क्या बात है? अब तो बाकी सब भी यहाँ मौजूद हैं। तभी अरमान ने देखा कि वसुंधरा और वीर वहाँ मौजूद नहीं थे। अरमान ने गहरी सांस भरी और बेमन से कहा, उन्हें भी यहाँ बुलाकर लेकर आओ। अरमान ने सीधे उन दोनों का नाम नहीं लिया, फिर भी दादाजी समझ गए कि उसका इशारा किसकी तरफ है। उन्होंने वसुंधरा और वीर बुलाने के लिए भेजा। कुछ वक्त में वसुंधरा और वीर वहाँ आ पहुँचे। वसुंधरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ छलक रही थीं। सब लोग परेशान होकर एक दूसरे से खुसुर-फुसुर लगे कि आखिर क्या हुआ। नानी माँ तो अरमान को बिना वजह हंसते हुए देखने के बाद अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कुछ पल और अरमान का ऐसा हाल रहा तो वो संभल नहीं पाएंगी। तभी अरमान ने वसुंधरा की ओर देखते हुए कहा, आज के बाद आप घर का कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। अरमान के मुंह से ये शब्द सुनकर सभी का दिमाग एकदम से खाली हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बम गिरा हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दादाजी तुरंत अरमान को इरिटेट होते हुए बोले, अरमान ये क्या बकवास कर रहा है तू? तो इस औरत को ऐसा कैसे बोल सकता है? दादाजी के इस सवाल पर अरमान तुरंत वसुंधरा को गले लगाकर एकदम से बोला, क्योंकि ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है और मैं इनके साथ मिसबिहेव होते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उनके सर पर बम फोड़ दिया हो। तब दादाजी सिचुएशन संभालते हुए बोले, ठीक है जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। तब अरमान आगे बोला, एक और बात, आज शाम को मेरी एक स्पेशल मेहमान घर आ रही है, इसीलिए मुझे पूरे सिंघानिया मेंशन में साफ सफाई चाहिए और हाँ अच्छा सा डिनर भी तैयार रहना चाहिए। मैंने सुना है कि ये लड़की, क्या नाम इसका, हाँ एंग्री बर्ड, ये मसाला पनीर बहुत अच्छा बनाती है। मैंने किसी के मुंह से सुना था, दरअसल उसने रौनक के मुंह से कुछ दिन पहले ही ये कहते हुए सुना था कि आस्था मसाला पनीर बहुत अच्छा बनाती है। अरमान की बातें सुनकर आस्था की आंखें एक पल के लिए हैरानी से चौड़ी हो गई और वो थोड़ा चिढ़कर बोली, आखिर ऐसा कौन सा शख्स आ रहा है मिस्टर सिंघानिया जो आप हमसे इतनी तैयारी करवा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी स्पेशल गेस्ट आने वाली है? कहीं ना कहीं आस्था के दिमाग में यही बातें घूम रही थीं, इसीलिए वो अरमान से डेस्परेटली जानना चाहती थी। तभी अरमान ने आस्था को घूरते हुए रूखेपन से जवाब दिया, तुम एक मामूली केयरटेकर हो, तुम्हें अपने मालिकों से इस तरह सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है, जितना कहा जाए उतना करो। और हाँ ओल्ड लेडी की बेटियों, तुम सब भी खाली मत बैठो, तुम सब भी मिलकर काम पर लग जाओ और अच्छा सा डिनर तैयार करवाओ। और याद रखना, अगर आज तुम सबने कोई काम ढंग से नहीं किया तो मैं आज ही तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर अरमान सीधा अपने कमरे में दंदनाते हुए चला गया। सब लोग उसकी बातें सुनकर दंग रह गए कि अचानक अरमान ने किसी को घर बुलाने का फैसला क्यों किया। आसपास का माहौल एकदम टेंशन वाला हो गया। कहीं ना कहीं सब अपने दिल दिमाग की कश्मकश में उलझे हुए थे। तभी अभिमान जी गुस्से से उठे और सीधे वसुंधरा के सामने आकर बोले, तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या किया है? जवाब दे, बता क्या किया तूने? अगर मेरे बेटे ने तुझसे इतनी नरमी से बातचीत की है तो तूने ही कुछ किया होगा। बता वसुंधरा क्या किया तूने? इस वक्त अभिमान जी की आंखें गुस्से से आग बरसा रही थीं और वो वसुंधरा को घूरते हुए आगे बोले, अगर तूने इस बार मेरे बेटे के जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा।
अभिमान जी अब गुस्से में पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और वो आगे बढ़कर वसुंधरा का गला जोर से दबाने लगे। वसुंधरा सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगी और सभी दौड़कर वसुंधरा के पास आए और उसे बचाने की कोशिश करने लगे। तभी ध्रुव ने अभिमान जी को पकड़ लिया। जैसे तैसे सभी ने मिलकर वसुंधरा की जान बचाई और वसुंधरा लंबी लंबी सांस लेने लगी। फिर अचानक उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता कि उसने मुझे गले से क्यों लगाया और मुझसे इस तरह से बातें क्यों की। तुम ऐसा क्यों समझते हो कि मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ? हाँ, ये सच है कि एक वक्त था जब मैं उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है। इतना बोलकर वसुंधरा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब सभी घर वाले चिंता से डूब चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरमान के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उसकी बातें बहुत रहस्यमय थीं। ध्रुव, वंशिका और बाकी सभी का दिमाग घूम गया था। एक तो सब ये नहीं समझ पा रहे थे कि अरमान का कौन सा स्पेशल मेहमान आने वाला है, और वसुंधरा का ऐसा व्यवहार देखकर सब लोग चौंक गए थे। तभी अचानक सबको ध्रुव की आवाज सुनाई देती है, मुझे लगता है ये वायरस का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अरमान भाई, जिसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, अचानक उन्हीं से इतने नरमी से पेश आ रहे हैं। जरूर ये वायरस का ही कोई साइड इफेक्ट है। कहीं ना कहीं सभी को ध्रुव की बात सही लग रही थी, क्योंकि इसके अलावा और क्या कारण हो सकता था। तभी नानीमा अचानक बोल पड़ी, भाई साहब, मुझे नहीं पता कि ये वायरस है या क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि दामाद जी पर किसी भूत, प्रेत या फिर किसी पिशाच का साया मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह की हरकतें वही लोग करते हैं। पल पल हंसते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं। हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, ये जरूर किसी आत्मा का प्रभाव है। नानी माँ की बातें सुनकर सब लोग अचानक से उस घटना को याद करने लगे जब वे घर में झाड़ फूंक करा रहे थे और तब अरमान ने पिशाच का नाटक किया था। सभी लड़कियां हड़बड़ाकर नानी माँ के पास बैठ गईं। वंशिका भी ये बात सुनकर थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन वो सारी बातें ध्यान से सुन रही थी।
अचानक नानी माँ चिंतित होकर बोली, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन दामाद जी पर जरूर किसी न किसी भूत प्रेत या पिशाच का साया है जो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चलो उनकी मदद करने के लिए कुछ करते हैं, नानी माँ ने कहा। सबसे पहले मुझे सबसे बड़ी पुजारी के पास ले चलो, मैं उनसे पूछताछ करके पूजा करवा लूंगी, शायद उसके बाद दामाद जी ठीक हो जाएं। उनकी इस बात पर दादाजी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, आप सब शांत रहो, और बहन जी, ये घर आपका भी है, इसलिए पूजा पाठ तो आप आराम से भी करवा सकती हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि अरमान का ऐसा कौन सा मेहमान यहाँ आने वाला है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। सभी अपने दिमाग के घोड़े जोरों से चलाने लगते हैं, लेकिन लड़कियों ने सोचा कि सबसे पहले उन्हें साफ सफाई और किचन में स्पेशल मेहमान के लिए खाना वगैरह बनाना होगा, उसके बाद वो सब उनसे बाद मिलेंगी। अब आस्था ने भी सोचा कि उसे सबसे पहले कपड़े बदलने चाहिए। देर न करते हुए वो तुरंत अपने कमरे की ओर चली पड़ी। जैसे ही वो कमरे में गई, उसे अरमान का खुला दरवाजा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अरमान किसी को कह रहा था, डार्लिंग तुम्हें समय से आना है, ठीक है, और हाँ, रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनकर आना, उसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। अरमान ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि आस्था अरमान की बातें आसानी से सुन सके। अब जैसे ही आस्था ने अरमान की इस तरह की बातें सुनी तो गुस्से से उसके दांत आपस में बजने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो गुस्से में सोच रही थी कि अरमान जी इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। जब उनकी यादें ठीक थी तब उन्होंने कभी हमसे भी इतनी प्यार से बातें नहीं की थी, तब भी उन्होंने हमें डार्लिंग नहीं बोला था, और अब किसी और को फोन पर डार्लिंग बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अरमान के ये शब्द आस्था का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। फिर वो होंठ भींचते हुए नफरत भरी आवाज में खुद से बोली, आने दो, कौन है वो? वो जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से फटाफट अपने कमरे में चली गई। फटाफट से उसने अपने कपड़े बदले और फिर गुस्से से दनदनाते हुए किचन में चली गई। आज आस्था सही से खाना नहीं बना पा रही थी। पनीर मसाला में उसने मिर्च को ज्यादा ही तेज कर दिया था, किसी डिश में उसने नमक ज्यादा डाला था तो किसी में कम। फिलहाल तो वो उल्टा सीधा खाना बना चुकी थी। वहीं ध्रुव, आहान और रौनक वंशिका नानी माँ के पास चिपके हुए बैठे थे। कहीं ना कहीं उन्हें नानी माँ की बातें बिल्कुल सही में लग रही थी, इसलिए उन्होंने देर ना करते हुए फटाफट से यूट्यूब वीडियो पर भूत भगाने वाले ओझा बाबा सर्च करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक बार सर्च बार में भूत भगाने वालों के बारे में लिखा और देखते ही देखते उनके पास कितने सारे लोगों की लिस्ट आ गई। ध्रुव ने भूत वाली वीडियो भी देख ली थी कि किस तरह लड़कियों में आत्मा आ जाती हैं, तो वे अपने बाल पटक पटक कर इधर उधर घूमती हैं। सब लोगों का दिमाग इस वक्त जोरों से चल रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या फैसला किया जाए। कई वीडियो देखने के बाद आखिरकार एक औरत उन्हें ठीक लगी। उस औरत ने बड़ा सा टीका लगाया हुआ था और उसके लंबे लंबे सफ़ेद रंग के बाल थे। तब आहान उसकी वीडियो देखकर जल्दी से बोला, नानी माँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगी, पिछली बार जो पंडित जी आए थे वो तो अरमान भाई को देखते ही खुद दुम दबाकर भाग गए थे, लेकिन इस औरत को देखो, ये कितनी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। मुझे लगता है हमें इसी औरत को अरमान भाई का भूत भगाने के लिए बुलाना चाहिए। नानी माँ को भी आहान का आइडिया ठीक लगा, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, आहान बिटवा, तुम एक काम करो,
तुम इनसे फोन पर ही बात कर लो। इसका नंबर भी वीडियो में दे रखा होगा, हो सके तो इसे कल के कल ही बुला लो। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद सभी ने सोचा कि जल्दी से भूत भगाने वाले इस औरत को ही बुला लेते हैं और एक बार अरमान को भी इसे दिखा देते हैं कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है। इसलिए अब फटाफट से फोन पर पूछताछ करने के बाद उस पावरफुल लेडी जिसका नाम अनामिका था, आहान ने उसे ऑनलाइन बुक कर लिया। वहीं दूसरी ओर वही अरमान अब थोड़ी शाम होते ही तुरंत आकर नीचे बैठ गया और सब लोगों को बारी बारी से देखते हुए बोला, मेरी मेहमान आने ही वाली है, सभी नौकरों को उसके लिए एक टांग पर खड़े रहना होगा और जो कुछ भी वो मांगेंगी फटाफट से उसे वो लाकर देना होगा। अब ये बात सुनकर दादाजी का मूड थोड़ा खराब हो गया, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाए और बनावटी हंसी हंसकर बोले, अरे अरमान बेटा, ऐसा कौन सा मेहमान आने वाला है जिसके लिए तुम इतनी तैयारी करवा रहे हो? क्या तुम अपने दादाजी को नहीं बताओगे? अरमान ने दादाजी के कंधों पर हाथ रखकर जवाब दिया, ओहो दादाजी, आपको पता है जो मेहमान आने वाला है उसे देखकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर अगले ही पल दादाजी और बाकी सब काफी ज्यादा हैरानी में थे, लेकिन आस्था के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वहीं दूसरी ओर संजना सिंह जल्दी ही सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो गई। उसके चेहरे पर आज जबरदस्त चमक थी और उसके कपड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज वो पूरी तरह से सिंघानिया मेंशन की मालकिन बनने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे संजना सिंघानिया मेंशन की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट मंडे से ही मैं ऑब्सेशन के चैप्टर बनाने पर काम करूंगी। अभी मेरे पास जितने भी चैप्टर बने हुए थे उसमें से केवल एक दो ही बचे हैं, बाकी सब मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सो प्लीज आप सब अपना साथ बनाए रखें। जैसे ही तबीयत ठीक होती है मैं फटाफट चैप्टर और आगे बनाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर देने की कोशिश करूंगी।